इसलिए भगवान खूब जो है सोच विचार करके और लक्ष्मण को बोलते हैं, किमर्थम आगतोसि त्वम, ये लक्ष्मण कैसे आए तुम, सीता का त्याग करके आ गए? और मैंने तुमको इतना कहा था ना कि सीता की तुम हर प्रकार से रक्षा करना, मेरी बात का तुमने कोई ध्यान ही नहीं दिया, सीता को छोड़ के आ गए। मेरा मन शंकित हो रहा है, राक्षसों ने सीता का भक्षण कर लिया होगा, सीता को मार दिया होगा, ऐसे शकुन हो रहे हैं, कुछ ऐसा लगता है आश्रम में सीता नहीं मिलेगी, क्या बात है? तुम उदास भी हो, संशय में भी पड़े हुए हो, सीता को छोड़ के भी आगे, क्या कोई विशेष बात हो गई लक्ष्मण? लक्ष्मण जी के टपटप आंसू गिरने लग गए, बोलो लक्ष्मण क्या बात है? लक्ष्मण जी रोते रोते कहते हैं, आपका स्वर जब हम दोनों ने सुना, लक्ष्मण त्राहिमाम, मैं तो जानता था कि उस राक्षस के स्वर है, लेकिन सीता उसको आपका वो आप ही का वास्तविक स्वर मानने लगी। मैंने बार बार कहा कि देवी राक्षस भाषितम, ये सब राक्षस की आवाज है, न इदम रामस्य वचनम, ये राम के वचन नहीं है, तुम जो है शोक मत करो, पर वो मानी नहीं, और फिर जो है वो बहुत भयभीत हो गई, और उसके बाद जो मुझे शब्द कहे हैं वो मैं मुख से नहीं कह सकता हूं, ऐसे मुझे अब शब्द कहे, मैंने तो कान बंद कर लिए और मैं आपके पास आ गया। इतना कहकर लक्ष्मण जी राम जी से चिपट गए, रोने लग गए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तू भी तुमने उचित नहीं किया, स्त्री की बातों में आ गए, स्त्री तो भाव प्रधान होती है, जैसा मन में भाव आया वैसा बोल देती है, इसलिए उनकी हर बात पर विचार थोड़ा ही होता है। तो या स्त्री भाषितम सत्यम कृत्वा त्यक्ता, तुमने उसकी बात को सच्चा मान लिया, जो भी कुछ कहा हो उसकी बात पर क्या ध्यान देना, तुम्हें तो मेरी बात का ऊपर विचार करना चाहिए ना, तुमने अच्छा नहीं किया, चलो हो गया सो जा, जो भी होगा देखते हैं। मेरे मन में ऐसा लगता है कि सीता आश्रम में नहीं मिलेगी, मम मन सीता आश्रम नाही, वही बात यहां बोलते हैं। बहुत देखो कई की जगह तो ऐसा लगता है गोस्वामी जी महाराज ने ही चौपाइयां यहां की लिख दी ऐसी, क्यों? गोस्वामी जी महाराज गुणग्राही है, गुणग्राही, आदमी को अच्छे गुण कहीं से भी ले लेने चाहिए। व्यास जी की वाणी है भाई, और शंकर जी बोल रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज तो कहे मैं तो भिक्षा ले रहा हूं इनसे, हे प्रिय, ऐसा करते करते वे वहां से आए और आश्रम के अंदर जो ही प्रवेश किए तो वहां सीता रहित आश्रम को देखा, तो राम जी खूब जो है विलाप कर रहे, वन देवी हो बताओ सीता कहाँ है, सीता के विषय में बताओ, पक्षियों तुम बताओ चुपचाप क्यों हो, तुम्हारी चहक कहाँ चली गई, तुम कितने ची पी करते रहते थे, एकदम चुपचाप हो, डरते किससे हो, तुमको कौन डरा रहा है, ऐसे राम जी विलाप करते पशु पक्षियों से पूछते हैं। पार्वती वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञोपी, और सब कुछ कर सकते हैं फिर भी आनंद रूप है, फिर भी शोक करते हैं, सर्वज्ञ है फिर भी पूछते हैं, और सब जगह रहने वाले हैं, सब जगह रहने वाले हैं, फिर भी वे सीता को अन्वेषण करते हैं, घूम देख रहे हैं उसको, ये सब माया में भगवान लीला करते हैं। जैसे कोई मोह में ग्रस्त व्यक्ति आसक्त पुरुष करता है, ठीक ऐसा राम जी करते हैं। ऐसे ढूंढते ढूंढते उन्होंने रथ को टूटा हुआ देखा, और जो है वहां पर धनुष को टूटा हुआ देखा, लक्ष्मण लक्ष्मण देखो देखो देखो, कोई सीता जी को ले जा रहा था तो कोई दूसरा झपट पड़ा उस पर, ये देखो धनुष टूटा हुआ है, रथ टूटा हुआ है, किसने तोड़ा है। आगे जाके देखा तो खून का एक नाला सा आ रहा था, ये खून जिधर से आ रहा है ये किसका खून हो सकता है, और वो जटायु जी दूर पड़े हुए थे यूं, अब मुंह तो था उनका यूं, और वो पड़े हुए थे विशाल शरीर, वो देखो वो राक्षस। मैंने कहा ना कि ये राक्षस ऐसे ही है, ये राक्षस है लक्ष्मण, मैं इसको एक ही बाण से मारता हूं। ऐसे करके बाण ताना तो उसी समय में जटायु जी ने आवाज लगाई, माम न मारे राम, राम मुझे मत मारो, तुम्हारी सीता की रक्षा में मैं तो यूं ही मर रहा हूं, तुम मुझे क्यों मारो, मैं जटायु हूं। दौड़ते हुए राम जी पास में गए, भारिया हरण करने वाले के साथ मेरा युद्ध हुआ और तुम्हारी भारिया का हरण रावण ने किया है, उसके धनुष को तो तोड़ा, उसके रथ को भी मैंने तोड़ के पटक दिया, लेकिन फिर अंत में उसने अपने तलवार से मेरे पांख काट दिए। मैं यही सोच रहा था कि तुम्हारे काम में तो मर ही रहा था, अब तुम्हारे मरते मरते दर्शन कर लूं। राम जी महाराज गए, जटायु जी तुमने मुझे बड़े भारी पाप से बचा लिया, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे यहां बाण मार देता। बताओ मेरी सीता को कौन ले गया है, किस लिए ले गया है, तुमने तो मेरे कार्य के लिए प्राणों का त्याग किया है ना, इसलिए तुम्हारे पर मेरा पूरा भरोसा है। जटायु कहने लगा, मेरे से ज्यादा तो कुछ बोला नहीं जाएगा, सार बात बता देता हूं। राक्षसों का एक राजा है रावण, वो सीता को लेकर दक्षिण दिशा में गया है, वहां मेरी वाणी काम नहीं करती है। ऐसा करते करते वो वहीं पर खत्म हो गया। खत्म होने से पहले इतना ही कहा कि राम तुम सर्वज्ञ हो, तुम भगवान हो, तुम परमात्मा हो, तुम विष्णु हो, केवल माया से मनुष्य बने हुए हो, तुम्हारा दर्शन करके मैं मर रहा हूं, मेरा जीवन सफल हो गया। हस्ताभ्याम स्पृश, राम तुम में एक बार अपने कोमल हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श कर दो, बस मैं सब प्रकार से अपना कल्याण समझूंगा और तुम्हारे लोक में चला जाऊंगा। राम जी ने स्पर्श क्या किया, अपने दोनों हाथों में उसको उठाया, अपनी गोद में रखा, उसको खूब सहलाया, और जैसे बेटा है वो बाप के लिए रोता है, ऐसे राम जी महाराज वहां पर रोने लग गए, उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। उसके बाद लक्ष्मण को बुलाकर कहा, लक्ष्मण पिताजी के दाह संस्कार में तो सम्मिलित नहीं हो पाए, लेकिन पिता का मित्र पिता ही होता है, इसका दाह संस्कार से आज दशरथ जी के दाह संस्कार में सम्मिलित होने जैसा व्यवहार अपने को करना है। बड़े आदर के साथ उसका दाह संस्कार किया, और फिर उसके बाद वृक्षों का जो फल होता है, फल का जो अंदर का हिस्सा लाला कर सब पक्षियों को और पशुओं को उन्होंने खिलाया, और उसके बाद जटायु दिव्य धाम में जाने लगा। जटायु का शरीर भी बड़ा दिव्य हो गया, चतुर्भुज रूप हो गया उसका, बड़ा दिव्य उसके लिए विमान आया, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान के पार्षद आए चार, और वे आकर के राम की स्तुति करते हैं, जटायु जी और उनके बीच में उनके चारों तरफ पार्षद है। जटायु जी कहते हैं, हे प्रभु आपके गुणों का कोई पार नहीं है, आप अप्रमेय हो, अर्थात किसी प्रमा के द्वारा आपका ज्ञान नहीं होता, आपका ज्ञान तो आप ही से ही होता है, बस मैं सतत आपको प्रणाम करता रहूं। आप सुख के अनंत सागरी हो, इंदिरा कटाक्ष क्षपित सुरेंद्र चतुर्मुखादि दुखम, लक्ष्मी जी के लिए ये इंद्रादि देवता और ब्रह्मा आदि सब दुख पाते रहते हैं, परंतु आपकी जब कृपा इन पर बरसती है तो सारा दुख दूर हो जाता है। क्या विलक्षण आपका रूप है, अविरत भव भावनाति दूरम, जो लोग रात दिन संसार के काम धंधों में लगे हुए हैं, संसार की भावना में ही रह रहे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये बाल बच्चे हैं, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा रुपया है, ये मेरा धन है, ये मेरा, केवल इसी की रट में जो लगे हुए हैं, उनसे तो आप अति दूरम, बहुत दूर हैं। उनके सामने यदि भगवान की बात की जाए तो कहते हैं भाई अब हमको तो भगवान मिलेंगे नहीं, इस जन्म में तो नहीं मिलेंगे, ऐसी ऐसी बातें वे लोग करते हैं। लेकिन जो जो है आपके भक्ति करने वाले हैं, वो कहते हैं कि भगवान के अलावा तो इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, सब तरफ भगवान ही तो भगवान है, जल भगवान, मकान भगवान, भोजन भगवान, मनुष्य भगवान, स्त्रियां भगवान, बाल बच्चे भगवान, पशु भगवान, भगवान के बाहर कुछ है ही नहीं, सब भगवान है। हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। पर धन परदार वर्जिता नाम, परगुण भूति सुतुष्ट मानसा नाम, परहित निरतात्मनाम सुसेव्यम। देखो जिस आदमी को दूसरे के धन पर और दूसरे की स्त्री पर किसी प्रकार की दृष्टि मलिन नहीं होती है, और जो केवल अपने पास जो कुछ सामान है उसमें संतुष्ट रहने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा आपकी बड़ी सेवा होती है और ऐसे व्यक्तियों पर आप अपार कृपा करते हो। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। देखो आप अपनी मुस्कुराहट के द्वारा सारी दुनिया का दुख दूर करने वाले हो, फिर भी लोग आपकी मुस्कुराहट को समझते ही नहीं है। हरि कमलज शंभु रूप भेदा त्वम, ब्रह्मा है तो आप, विष्णु है तो आप और शिव है तो आप, इतना ही नहीं सामान्य कीट पतंग है वो भी मूलतः देखा जाए तो आप ही हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। बस हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, न बैकुंठ चाहता हूं, न कोई लोक चाहता हूं, न परलोक चाहता हूं, बस केवल आपकी शरण चाहता हूं। इस प्रकार से वो भगवान की शरण में यूं हाथ जोड़ रहे हैं। भगवान ने कहा जाओ जाओ जटायु जी, आप हमारे परम पद को प्राप्त हो जाओ, और जो तुम्हारी स्तुति की है, तुमने हमारी स्तुति गाई है, इस स्तुति को जो सुनेंगे वो सारूप्य को प्राप्त हो जाएंगे। जटायु जी वहां से चले गए। इति राघव भाषितम तदा श्रुतवान हर्ष समाकुलो द्विज, रघुनंदन साम्यमास्थित प्रययौ ब्रह्म सुपूजितम पदम। फिर जो है वो भगवान जैसा रूप प्राप्त करके ब्रह्मा आदि से पूजित जो लोक है उस लोक में जाकर निवास करने लग गए। भगवान शंकर बोलते हैं कि सुनो पार्वती, अब जो है राम जी महाराज आगे गए, आगे गए सीता जी के खोज के लिए, तो चलते चलते एक विचित्र प्रकार का राक्षस दिखाई दिया। उस राक्षस के क्या था कि छाती के अंदर आंखें, छाती में ही उसका मुख था, उसका और मुख तो था नहीं, और चार कोस में उसकी भुजाएं फैली रहती थी। उसका नाम था कबंध, वो कबंध था, वो यही इनके बीच बीच में ही जो भी कोई पशु पक्षी जीव जंतु आए बस उसको यूं लेता रहा, खाता रहता था वो, और कुछ जानता नहीं था। सर्व सत्व विहन सके, सब प्राणियों की हिंसा करने वाला था। राम जी महाराज अपने चल रहे थे, ऐसे उसके दोनों के दोनों राम और लक्ष्मण उनकी भुजाओं में आ गए। राम जी ने कहा रे लक्ष्मण, बिना किसी कारण के पास में कोई राक्षस दिखाई भी नहीं दिया, और ये देखो अपन किसी की भुजा में आ गए हैं। ये कहेगा ये कैसी लंबी भुजा है रे, अरे ये तो बहुत लंबी भुजा है, देख लक्ष्मण ये इतनी दूर तक इसकी भुजा है राक्षस की, उसके चक्कर में पड़ गए, और वो देखो इसका मुंह है, जो पेट में उसका मुंह है, फंस गए लक्ष्मण, बड़े फंसे। सिरप पाद विहीनो यम, न तो इसका सिर है न इसके पैर है, केवल एक वक्षस्थल है, और बाहुओं से ही अपने को पकड़ लिया, कोई मार्ग अपने को दिख नहीं रहा है, बताओ लक्ष्मण क्या करे, ऐसा कोई उपाय करोगी अपने को खा न सके। ये क्या विचार करते हैं भैया, तलवार ले ओ, एक तलवार आप रखो एक तलवार मेरे पास, आप इसकी भुजा काट दो, एक भुजा आप काट दो एक भुजा मैं काट देता हूं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो राम जी ने तो क्या किया, उसकी दाहिनी भुजा काटी, लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा काटी। अब वो दोनों भुजाएं काटी, तब उस राक्षस ने कहा, अरे आप दोनों कौन हो रे, भुजा कटने से मुझे बड़ा आनंद मिला है, मेरे दर्द नहीं हुआ है, कौन हो तुम। बाहुच्छेद को लोके दिवी देवेशु वाकुत है, कोई स्वर्ग का प्राणी मेरी भुजा नहीं काट सकता, पृथ्वी का प्राणी भी नहीं काट सकता, लेकिन भुजा काट दी मैं निहाल हो गया, कौन हो बताओ तो सही। राम जी कहने लगे, अरे राक्षस राज, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं, मेरे साथ ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, हमारी एक स्त्री थी त्रिलोक सुंदरी, उसका नाम सीता था, कोई राक्षस उसको ले गया, उसको खोजने के लिए हम वन में आए थे, इतने में ही हम तो तुम्हारे भुजाओं के चक्कर में पड़ गए, तो हमने तुम्हारी भुजा को काट दिया, अब बताओ वो राक्षस कौन हो सकता है। राम, तुम राम हो, दशरथ नंदन राम हो, अरे मेरे पास आओ, थोड़ा मेरे पास आओ, मैं धन्य हो गया राम, मैं ये राक्षस देखा नहीं, कैसा कुरूप राक्षस, ये देखो मेरे पास क्या क्या खाई हुई चीजें पड़ी हुई है, दुनिया को मैं आज ये कह सकता हूं कि कितने दयालु राम है, कि ऐसा तो मेरा आहार ऐसा मेरा कर्म, फिर भी देखो राम ने मेरे पर कृपा की और आज मुझे ये देती होने से पिंड छुड़ाया। असल में मैं गंधर्व राज था, मैं बड़ा स्वरूपवान था, बहुत सुंदर मेरा रूप था, जहां कहीं भी मैं विचरण करता था अपने रूप को देखता रहता था, और यूं बार बार देखता निहारता, ऐसा लगता कि मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसे करते करते एक बार कोई ब्राह्मणों की सभा लगी हुई थी, उसमें अष्टावक्र जी थे। अब जो अष्टावक्र जी आठ जगह से टेढ़ा हुए हुए, अच्छा इधर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी से मैंने वरदान ले लिया था कि मैं हर किसी से मरूं नहीं, ऐसी मेरे में योग्यता आ गई, योग्यता आ जाने के बाद और घमंडी हो गया। इधर एक बार ब्राह्मणों की सभा में अष्टावक्र जी जा रहे थे, अष्टावक्र जी आठ जगह से टेढ़ा मेढ़ा, हाथ से पैर से कमर से यूं 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 चले तो यूं चले, शरीर से सिर से अष्टावक्र जी महाराज टेढ़े मेढ़े थे। उनको देखा तो मैं जोर जोर से हंसने लगा, ये देखो ये भी कोई शरीर होता है, ऐसा भी कोई होता है, ऐसे ऐसे मैं उनको जो हंसने लगा। तब उन्होंने मुझे फटकारते हुए कहा, अच्छा राक्षस हो बाबू, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो मैंने कहा, महाराज गंधर्व से आप देवता बनाते, छोटा मोटा ही नीचा बनाते, इतना नीचा बना दिया राक्षस, कृपा करो महाराज, गलती के लिए क्षमा याचना करता हूं। तो भाई अब हो तो गया, लेकिन अब तुझे इस योनि में भगवान मिलेंगे। मैं बड़ा खुश हो गया, सुंदर शरीर लेके क्या करेंगे, राक्षस शरीर में यदि भगवान मिलते हो तो कोई बात नहीं है। देखो कहीं कूड़े कचरे में पड़ा हुआ 5 करोड़ 10 करोड़ का यदि हीरा हो तो वो कूड़ा कचरा खराब लगता है क्या आदमी को, कहेगी इसमें 10 करोड़ का हीरा है, इतनी सारे जो है प्लास्टिक की थैलियां कूड़ा कचरा सब कादा वेदा सब वहां पर पड़ा है। लेकिन जब मणि पर दृष्टि है ना, कि यहां पर 5 करोड़ का हीरा पड़ा है, हीरे पर दृष्टि है, वो कूड़ा कचरा अच्छा मालूम देता है, यहां होगी, यहां पर वो देखो वो हीरा होगा, यहां हीरा हो, यहां हीरा होगा, हाँ इसको ढूंढो इसको ढूंढो, कूड़े कचरे की गंदगी मालूम देती नहीं, वहां तो दृष्टि ही बस 5 करोड़ के 10 करोड़ के हीरे पर दृष्टि है। ऐसे ही जब राक्षस शरीर में आने की बात कही, कहा नहीं त्रेता युग में भगवान अवतार लेंगे, दशरथ जी के बेटा बनेंगे, उस समय वो तुम्हारी भुजा काटेंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो मैं तो सोचता ये योनि बड़ी अच्छी है, राक्षस योनि बड़ी अच्छी है जिसमें भगवान मिलते हों। तो आज मेरा ये अष्टावक्र का वरदान पूरा हो गया, आज आपके दर्शन कर रहे हैं महाराज। एक बार ऐसा हुआ कि देवराज इंद्र थे, वो इंद्र का मैंने अपमान कर दिया, तो इंद्र ने वहां पर अपने हाथ में घोटा लेकर वज्र लेकर मेरे माथे पर यूं डाला, तो मेरा सिर था अंदर बैठ गया। ब्रह्मा जी ने मरने के लिए तो कहा ही नहीं था, वरदान दे दिया था मुझे, मरा तो नहीं, मेरा सिर इस थैले में चला गया, अंदर तो पोलाट होती, अंदर बैठ गया मेरा सिर। अब जो है और जो है मेरी भुजा लंबी चौड़ी कर दी, खाने पीने के लिए प्रबंध कर दिया, और कहा कि भाई राम, ये राम अवतार लेंगे तब इसका भुजा कट जाएगी। तो ये मेरा वरदान आज पूरा हो गया। आप सीता के लिए पूछते हैं तो इस शरीर से मैं नहीं बता सकता हूं। आप खड्डा खोदिए पहले, खड्डा खोद करके और उस खड्डे के अंदर आप मुझे डाल दीजिए, और फिर मेरे आग लगाइए, उस आग में जलने के बाद फिर मैं दूसरे शरीर में आऊंगा, तब जो है मैं आपको सीता के विषय में बताऊंगा। भगवान ने कहा अच्छी बात है भाई। लक्ष्मण जी ने खड्डा बनाया, खड्डे के अंदर लकड़ियां डाल दी, लकड़ियां डालकर उनको जलाया और उसके अंदर इसका शरीर डाल दिया। शरीर डालने के बाद अब उसके अंदर से एक दिव्याति दिव्य कामदेव के समान सुंदर शरीर वाला ये गंधर्व प्रकट हुआ। प्रकट होकर के बड़ी भक्ति से वो भगवान की स्तुति करने लगा, कहने लगा प्रभु आज मेरा मन आपकी स्तुति के बाहर कहीं जाता ही नहीं है। आप अवांग मनोगोचर हैं, संसार में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है वो आप हैं। देखो जो सूक्ष्म चीज होती है ना वही व्यापक होती है। पांच भूतों में आकाश सबसे सूक्ष्म है, इसलिए आकाश सब में व्यापक है, और आकाश से भी सूक्ष्म प्रकृति होती है, प्रकृति से भी सूक्ष्म परब्रह्म परमात्मा होते हैं। तो आप वाणी के विषय नहीं है, और तत्कथम त्वाम विजानीयात, इसलिए हर आदमी हर प्राणी आपको कैसे जान सकता है। जैसे ये हाथ है, इसे ये मकान पकड़ लो साहब, ये मकान, मकान मुट्ठी में ले लो। अरे मकान को मुट्ठी में कैसे लेंगे, मकान तो है बड़ा, इसकी छत कितनी बड़ी है, हमारी मुट्ठी तो इतनी सी है, कैसे ले लेंगे। ये डेस्क है, इसको आप मुट्ठी में पकड़ लो, नहीं पकड़ सकते। ऐसे ही इसको कैसे पकड़े, ऐसे ही मन बुद्धि वाणी तो बहुत छोटी है, आप बहुत व्यापक हो महाराज। ये जीव नाम क्यों पड़ता है कि बुद्धि में जो चेतन का आभास होता है उसका नाम जीव है। देखो कोई आदमी बाहर कांच के द्वारा यहां चिल्का डाले, कहेंगे सूर्य है, कि सूर्य नहीं है, ये तो कांच में पड़ा हुआ सूर्य का चिल्का है, वो यहां आ रहा है। ऐसे ही बुद्धि के अंदर जो चेतन का आभास पड़ता है वही वास्तव में जीव कहलाता है, और जब वो आभास खत्म हो जाता है तब वो एक प्रकाश सूर्य का सूर्य रहता है। इसी प्रकार से आप रहते हो महाराज। आप मन बुद्धि आदि के सबके साक्षी हो, आप ही जो है ये रसातल है, तो ये क्या आप ही के ये पगतली है, ये रसातल आपकी पगतली है, पृथ्वी है ये अतल है, और आकाश है ये आपकी नाभि है, और ये गर्दन है, ये गर्दन ये महरलोक है, या मुख है ये जनलोक है, ये जो ललाट है ये तपोलोक है, और ये जो मूर्धन्य भाग है ये सत्यलोक ब्रह्मलोक कहलाता है। ये सब आप ही का शरीर है संसार, और ये माया क्या है, आप जो हंसते हैं आपकी हंसी ही माया है। धर्म आपके सामने रहता है, अधर्म पीठ में रहता है। रात और दिन है ये क्या है, ये आपकी पलके है, पलके रात दिन, एक दिन होता है तब आपकी आंख खुलती है, रात होती है आंख बंद होती है, आंख खुलती बंद होती, खुलती बंद होती है। जितने वृक्ष हैं ये आपके रोमावलियां हैं। इस स्थूल रूप के अंदर भी यदि आपकी बुद्धि कर ले तो अनायास न मुक्ति स्यात्, अनायास मुक्ति हो जाए। और फिर यदि किसी एक स्वरूप में ध्यान करके उसमें प्रेम कर ले फिर तो कहना ही क्या है, तब तो वो आप ही के रूप वाला हो जाता है। क्या सुंदर आपका रूप है, धनुष बाण धारण किए हुए। और जिसमें भी आप सीता जी का खोज करते हैं, सीता जी के लिए रोते हैं, उस समय तो आपका रूप और ही सुंदर लगता है। देखो रोने वाला कभी सुंदर होता है? बहुत भद्दा लगता है रोने वाला। एक बुढ़ा आदमी रो रहा था, इतना भद्दा लग रहा था वो बुढ़ा आदमी। अब क्या ही रोवे भाई, बुढ़ा हो गया तो रोए के तो होठ हुआ दांत आको नहीं, बहुत भद्दो लगे। एक आदमी भगवान के लिए रोता है, बहुत अच्छा लगता है, श्रद्धा होती है, चर्चा करते हैं लोग, अजी उसकी क्या करना जी, वो तो भगवान का नाम लेते लेते रोता है। और कोई बेटे के लिए रोए, कोई बाप के लिए रोए, कोई परिवार के लिए रोए तो भद्दा लगता है। हमारे जो है भक्त लोग क्या बात बोलते हैं कि महाराज आप सीता जी को जब खोजते हैं उस समय बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसा रूप मेरे अंदर बैठ जाए। सीता जी को आप खोजते हैं ना शोक में बैठे हुए आप, वो रूप मेरे अंदर बैठना चाहिए। और सर्वज्ञ शंकर भगवान पार्वती के सहित अपने मन में आप ही को धारण करते हैं। और लोगों को वे काशी में बैठे हुए तारक मंत्र सुनाते रहते हैं। काशी में जो आदमी मरता है ना उसके कान यूं ऊंचा होता है, और कहीं मर नहीं काशी में मरता कान ऊंचे होते हैं। इसीलिए काशी के अंदर लोग काशी के आसपास भी लात करके काशी में ही जलाते हैं, क्योंकि मरने वाले को वहां पर भगवान शंकर राम मंत्र का उपदेश देते हैं। कहते हैं काशी में मरने से मुक्ति होती है, लिखा तो यही काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है। तो क्या उसके कर्मों का क्या होता है कि भाई वहां कर्मों का ये होता है कि काशी करोत होती थी पहले, वहां पर भैरव यातना होती है, वो थोड़ी देर के लिए उसकी यातना इतनी भयंकर होती है, असह्य होती है, बस वो इतनी यातना हो गई थोड़ी देर के लिए फिर मुक्ति है, ऐसा लोग मानते। अब तो काशी क्रोध बंद हो गया अस्तु। लेकिन सेठ जी जयदयाल जी गोविंदका जी कहते थे कि ऐसी जो शास्त्रों में मुक्ति आती है वो मुक्ति के लिए अपने को प्रयास नहीं करना चाहिए, अपने को तो भगवान से प्रेम पूर्वक मुक्ति लेनी चाहिए, प्रेम पूर्वक। काशी में मरने से मुक्ति होती है ये तो सदाव्रत का अन्न है। अब देखो जिनके पास पैसा है, जो रात दिन कमाने वाले हैं, अच्छे जिनकी हैसियत है, वो सदाव्रत में अन्न नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। अरे भाई मैंने राम जी पैसा दे रखा है, मेहट फोगट को क्या खावा मैं, भाई पैसा दे ले, पैसा दिया भोजन कर लिया बस ठीक है, पैसा माने दिया है। तो जैसे धनवान आदमी, परिश्रमी आदमी, उद्यमी आदमी अपने अन्न के लिए अपना पैसा खर्च करके खाना उचित मानता है, ऐसे ही अच्छे जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के साथ प्रेम करके मुक्ति चाहते हैं, प्रेम करें। और तो ऊंचे भक्त होते हैं वो तो कहते हैं हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें तो भगवान का प्रेम ही चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। और जो यूं मुक्ति देव, हमको मुक्ति देव, और हम तो काशी में जाके मरेंगे, मुक्ति देव, और साधन भजन करते नहीं, साधन भजन करते नहीं, और सोचते हैं कि शास्त्र में लिखा है काशी में मरने से मुक्ति हो जाएगी, चलो अपन तो काशी में मर जाओ, तो ये क्या है, ये सदाव्रत का अन्न है, ये सदाव्रत का अन्न। बिना साधन भजन किए हुए मुक्ति चाहते ये ममतापना है। सेठ जिनका है ये पढ़ा है ये सेठ जी के लेख में, ये तो एक तरह से ममतापना है। कोई आदमी सदाव्रत में जाए भाई, अपने भाई जिन दरिद्र नारायण को भोजन कराना है, आओ ले जाओ भोजन करो, कोई लाओ लाओ मनी देव मनी देव, अल्लाह बाबा तू ही ले देवा नहीं, ऐसे ममता बन करके कल्याण नहीं करना चाहिए, कल्याण साधन करके प्रेम करके करना चाहिए। अस्तु मुमूर्षुणाम सदा काश्याम तारकम ब्रह्मवाचकम। और जो राम 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 ऐसा उपदेश सुनकर के आपके प्रेम के अंदर लगे हुए रहते हैं, वे महाराज माया से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि माया उनको घेर ही नहीं सकती, मुंह पर राम राम रहता है। जैसे जिस घर में जागरण होता है उस घर में चोरी नहीं होती, पहरा लगा रहता है वहां चोरी नहीं होती, ऐसे ही भाई जो राम 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 करते हैं, राम राम क्या है, ये पहरेदार है, पहरेदार भगवान का नाम पहरा लगाता है, तो यहां माया आदि का कार्य चोर वगैरह नहीं आ सकते। हे प्रभु रक्षा करो महाराज, आपकी माया मेरे पर प्रभावित न हो। राम जी कहते हैं कि हे देवराज गंधर्व, तुम्हारी स्तुति से हम बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े बड़े योगी लोग ऐसी स्तुति गाया करते हैं, तुम तो भाई एक बात बताओ कि हमारी सीता का कुछ पता नहीं बताया। वो कहता है महाराज, आप योगियों के हृदय में रहने वाले भावों को जानने वाले हैं और सीता को आप नहीं जानते, लीला है आपकी, और आप इस लीला में मुझसे पूछ करके मेरे को लीला का पात्र बनाकर मुझे गौरव प्रदान करते हैं। इसलिए महाराज आपकी दिव्य शक्ति से ही आपको बताता हूं कि यहां थोड़ी दूर के आश्रम में शबरी जी रहती हैं। आप शबरी के आश्रम में जाओ और वो भक्ति से आपको बहुत दिनों से चाह रही है, सर्वम ते कथयिष्यति, वो आपको सब समाचार सुना देगी, आप शबरी के वहां जाओ। इत्युक्त्वा प्रययौ सोऽपि विमानेनार्क वर्चसा, वो तो स्वर्णिम विमान में अपने धाम में चले गए। और इधर भगवान आगे बढ़े, बड़ा भयंकर जंगल था, सिंह व्याघ्र आदियों से वो दूषित था जंगल, जंगल में चलते चलते शबरी के आश्रम में आए। शबरी ने देखा कि राम लक्ष्मण मेरे आश्रम में आए हैं, अब शबरी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। शबरी के तो आंखों में आंसू आते हैं और शबरी कहती है, अरे आंसू तुमको तो पहले जितना आया आ गया, अब क्यों आती हो, अब क्यों आते हो तुम, क्यों अब आ रहे हो, मेरे को तो राम जी के पूरे दर्शन ही नहीं हो पाते। अरे आंसू रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब मत आओ, पहले बहुत आ लिए तुम, अब मत आओ, अब तो हमको राम जी के दर्शन तो करने दो। ऐसे अपने आंख में आने वाले आंसुओं को रोकना चाहती है राम जी के दर्शन के लिए। स्वागत है, बड़ा स्वागत किया, आसन पर बैठाया, राम लक्ष्मण के चरणों को धोया और जल के द्वारा उनका जो अभिषेक किया और अनेक प्रकार के फल फूल जो थे वो उनके सामने रखे। फलानी अमृत कल्पानी, देखो हमने किसी रामायण में नहीं पढ़ा है कि राम जी को उन्होंने ऊठे फल दिए। कौन से रामायण से लोग बोलते हैं पता नहीं है कि चाखा और राम जी ने चाखा। ये देखो आजकल लोग है ना ऊंटा खाते हैं एक दूसरे का, तो चला दिया है कि राम जी ऊंटे फल खाए, ऊंटे फल नहीं खाए राम जी ने, तो राम जी को मीठे फल दिए। मीठे का क्या पता चलता था उसको कि वो फल लाती थी जो देखती थी कि इस वृक्ष का फल बड़ा मीठा है, तो एक फल जैसा होता है वैसा ही सब होते हैं। तब उसने क्या किया कि फल चख लिया कि हाँ ये अच्छा फल मीठा है, तो ये फल ले लो, ये फल इस वृक्ष का ये फल है कि ये ले लो, ये खट्टा है ये मत ले हो तो नहीं ले हो। ऐसे अमृत कल्पानी मधुराणी फलानी ददौ, ऐसे उन्होंने ला करके फल दिए और फूल उनके चरणों में रखे। और फिर जो है सबरी बड़े भक्ति भाव से कहने लगी कि महाराज इस आश्रम में रहते हुए मुझे बहुत वर्ष हो गए, ये मेरे गुरु का आश्रम है, मतंग ऋषि का आश्रम है। मतंग ऋषि एक बड़े बूढ़े महात्मा थे, हजारों वर्षों तक वे यहां रहे, बहुत समय हो गया उनको गए हुए, समय हो गया ज्यादा। मैं जब उनके यहां आई सेवा करने लगी तब उन्होंने मुझे कहा कि देख शबरी तुम यहीं रहना, मेरा तो शरीर अब जा रहा है, तुम इसी आश्रम में रहना और यहीं पर राम और लक्ष्मण इस आश्रम में आएंगे, क्योंकि राक्षसों के वध के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की है और वे ही दशरथ जी के यहाँ पुत्र बनकर के आएंगे। और जब वो चित्रकूट पर आप थे ना, उस समय उन्होंने कहा कि अब वो आ गए हैं, चित्रकूट में रह रहे हैं, अब मेरा तो समय पूरा हो गया, मैं तो जा रहा हूँ, अब वो यहाँ आएंगे, तब तक तुमको यहीं रहना है। दृष्टि वराघवम दग्ध्वा देहम यास्यसि तत्पदम, जब राम जी के दर्शन कर लो ना, फिर उसके बाद तुम अपना शरीर यहाँ रखना मत, तुम अपना शरीर जो है भस्म कर लेना। तो मैं तो रात दिन आपका ध्यान करती थी, गुरु वचनों में मेरा पूर्ण विश्वास था, आज आपके दर्शन हो गए। तब संदर्शनम रामे गुरु नाम अपि मे नहीं, मेरे गुरुजनों को आपके दर्शन नहीं हुए, मेरे मुझे दर्शन हुए। इसका अर्थ क्या है कि गुरुओं की कृपा होती है वो गुरु से भी बढ़कर होती है, ध्यान देना, गुरु जो कृपा करते हैं, ऐसे ही माँ की कृपा होती है वो माँ से बढ़कर होती है, पिता की कृपा होती है पिता से बढ़कर होती है, ऐसे ही भगवान से बढ़कर भगवान की कृपा होती है। इसलिए भगवान के दर्शनों की अपेक्षा भगवान की कृपा की चाहना करो, भगवान की कृपा मिले हमको, भगवान की कृपा मिले। तव संदर्शनम रामे गुरु नाम अपि मे नहीं, योसिन मूढ़ा प्रमेय आत्मन ही न जाति समुद भवा। मैं महाराज एक तो स्त्री, एक मूर्ख, एक शबर जाति में मैंने जन्म लिया, हीन जाति में, अतएव मेरे लिए आपके दर्शन हो गए। हे महाराज, मैं तो आपके दासों के दासों के दासों के दासों में 100 संख्या लगा दो तब भी आपके यहाँ दर्शन का मुझे अधिकार नहीं है, फिर भी आपने जो मुझे इस प्रकार से दर्शन दिए हैं, महाराज मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, जानती नहीं कैसे स्तुति करूँ, आपकी क्या बड़ाई करूँ, कुछ पढ़ी लिखी नहीं, कुछ मैं जानती नहीं, कुछ नहीं जानती। देखो पूरे रामायण में एक शबरी ऐसी मिलेगी कि जिसने न राम के नेत्र का वर्णन किया है और न राम जी के मुखारविंद का वर्णन किया है, न कोई कानों का वर्णन किया है, न धनुष का वर्णन किया है, न राम के रूप का वर्णन, कुछ भी वर्णन नहीं किया, एक शबरी मिलेगी ऐसी। क्या महाराज, मैं तो आपका कोई स्तोत्र नहीं जानती, मैं तो कोई वाक्य भी बनाना नहीं जानती, स्तोतुम न जाने देवेश है, किम करोमि, क्या करूं। अब आप खुद ही अपने स्वभाव से प्रसन्न हो जाइए, मेरे पास तो आपको प्रसन्न करने का कोई साधन नहीं है। राम जी महाराज कहने लगे, हे शबरी माई, देखो मैं कोई पुरुषों पर कृपा करता हूं या स्त्रियों पर कृपा करता हूं या ब्राह्मणों पर कृपा करता हूं या साधुओं पर कृपा करता हूं या मैं सन्यासियों पर कृपा करता हूं, ऐसी बात नहीं है। मेरी भक्ति के लिए कोई शर्त नहीं है। मुझे यदि आप चाहते हो मेरे में भक्ति की जाए, इतना मात्र बहुत है। मेरे में भक्ति की जाए तो भक्ति ही मेरे प्रसन्नता का कारण है। कितना ही बड़ा यज्ञ कर दो, करोड़ों रुपए का दान कर दो और कितनी ही आप तपस्याएं कर लो, कितने ही वेद की पुस्तकें पढ़ लो और कितने ही दूसरे कर्म करो, यदि लोगों में भक्ति नहीं है तो मुझे तो वो प्रसन्नता का कोई कारण दिखता नहीं है। हे भामिनी, भक्ति कैसे पैदा होती है ये मैं तुमको बताता हूं। प्रथम भगति संतन कर संगा, ठीक ये बात लिखते हैं, सताम संगति रे वात्र साधनम प्रथमम स्मृतम। भक्ति प्राप्त करने का पहला साधन है संतों का संग किया जाए। संतों का संग का अर्थ क्या हुआ भाई, घर छोड़ करके साधुओं के पास फिरते रहे, इसका नाम नहीं है। वो जो बात कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, उसके अनुसार चलने का नाम भक्ति है, सत्संग है। और दूसरी भक्ति क्या है, दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, तो द्वितीयम मत कथा लाप है। गोस्वामी जी महाराज ने कितना आदर किया है अध्यात्म रामायण का, जो नवधा भक्ति गोस्वामी जी ने लिखी है वो नवधा भक्ति पूरी अध्यात्म रामायण में ज्यों की त्यों आती है। दूसरी है कि मेरी कथा सुने, कथा कहें, ये मेरी दूसरी भक्ति है। तृतीयम मद गुणे रणम, और तीसरी भक्ति है मेरे गुणों की चर्चा करना, मेरे गुणों की चर्चा करना, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगवान, तीसरा नाम, देखो नाम दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी दे दो बात वही आती है। अच्छे अच्छे महापुरुष हैं, आचार्य लोग हैं, उनकी उनकी जो है पूजा करना। तो चौथी भक्ति बता रहे हैं, दूसरी चौथी भक्ति क्या है? व्याख्या त्रितो मद वचसा, मेरे वाणी की व्याख्या करना, जो गीता है ये भगवान की वाणी है उसकी व्याख्या करना, ऐसे ही उपनिषद है उनकी व्याख्या करना। तो व्याख्या त्रितो मद वचसा। और आचार्योपासनम भद्रे मद बुद्धिया अमायया, और गुरुजनों की उपासना करना, उनकी सेवा करना निष्कपट भाव से, ये पांचवी भक्ति है। और छठी भक्ति क्या है कि मेरी पूजा में निष्ठा रखना, यम नियम आदि का पालन करना, और मेरे मंत्र की उपासना करना, अर्थात हरदम मेरा नाम लेते रहना, ये सातवीं भक्ति होती है। और संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव रखना, और मद भक्तेषु अधिका, और उसमें जो मेरे जो भक्त होते हैं उन भक्तों में मेरे से विशेष आदर करना। सामान्य रूप से तो मैं सब में हूं, लेकिन मेरे जो भक्त हैं उनके अंदर विशेष रूप से मेरा स्वरूप समझना, मेरे से भी अधिक उनकी पूजा करना, ये आठवीं भक्ति है। और नौवीं भक्ति है तत्व का विचार करना। कई लोग कहते हैं कि ये तो ज्ञान की बात है, भगवान तो कहते हैं तो भक्ति है। नवमम तत्व विचारो मम, मेरे तत्व पर विचार करना, ये नौवीं भक्ति है। अब ये चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई क्यों न हो, हम इस विषय में कुछ भी नहीं देखते हैं, हम तो केवल अपनी भक्ति देखते हैं। और देखो जब मेरी भक्ति हो जाती है तो तत्वानुभूति अपने आप हो जाती है। तत्वानुभूति के बाद मेरी भक्ति हो जाए ये इतना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति के बाद तत्वानुभूति हो जाएगी इसमें निश्चित बात है। इसलिए मनुष्य को जो है इस विषय में, मेरी भक्ति के विषय में सुनिश्चित रहना चाहिए। भवेत सर्वम ततो भक्तिर मुक्तिरेव सुनिश्चितम। अब देखो शबरी, सीता के विषय में तुमको कुछ ज्ञान है तो मुझे बताओ, मैं सीता के विषय में पूछना चाहता हूँ, कौन ले गया, कहाँ ले गया, और वो सीता कैसी है मुझे बताओ। शबरी जी कहती है, महाराज मेरे अंदर छिपी हुई 9 प्रकार की भक्ति जिसको मैं नहीं जानती, वो आप भक्ति मुझे बता रहे हैं, और जो सीता बाहरी कहीं होगी जहां तक हमारी आंखें भी नहीं पहुंच सकती, बुद्धि भी नहीं पहुंच सकती, उस सीता के विषय में आप मुझसे पूछते हैं, ये आपकी बड़ी कृपा है महाराज, आप भक्तों का मान रखने के लिए ऐसा करते हैं, सब जानते हैं फिर भी आप मुझसे पूछे। लोकान अनुसृत है, लोक संग्रह के लिए, मेरा सम्मान करने के लिए आप ऐसा पूछते हैं। तो मैं आपको बताती हूं, सीता जीवित है, सीता रावण के वहां है, सीता लंका नाम की नगरी में है, वर्तते अधुना, अभी है वो, मरी नहीं है, और उसको प्राप्त करने का साधन भी बता देती हूं कि यहां से थोड़ी दूर आगे जाओ पंपा सरोवर मिलेगा। पंपा सरोवर के पास ऋष्यमुख पर्वत है, ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव नाम का एक बानर है, वो अपने साथ 4 बंदरों के साथ, 4 मंत्रियों के साथ रहता है। सुग्रीव स्वयं बानरों का राजा है। सुग्रीव अपने ही एक अब बराबर का भाई है, जो बल में भी बराबर का है, हर दृष्टि से बराबर का है, उससे डरा हुआ ऋषिमुख पर्वत पर रहता है। और ये बाली किष्कंधा का राजा है। आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए और उस मित्रता में सुग्रीव के पहले सहायता कीजिए, उसके बाद सुग्रीव आपका सब काम बना देगा। ये तो मैंने आपके लायक आपकी बात कही, अब मैं आपके सामने अपने शरीर को अग्नि में प्रवेश करवाता हूँ, करवाती हूँ। एक मुहूर्त आप खड़े रहना, जब तक मेरा शरीर जलने जाए और आपके दिव्य धाम में मैं चली न जाऊं, तब तक आप यहीं रहना। ऐसा विचार करके और सबरी जी ने वहां अपने अंदर ही अग्नि पैदा की। अग्नि पैदा करके उसके अंदर अपने शरीर को भस्म कर लिया और सबरी जी को मोक्ष मिल गया। तो देखो पार्वती, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो क्या प्राप्त नहीं कर सकता। अधम जन्मा सबरी भी मुक्ति को प्राप्त हो गई। फिर जो श्रेष्ठ पुरुष है, ब्राह्मण है, उनके तो कहना ही क्या है। देखो पार्वती, एक भक्ति है जो मुक्ति करने वाली है, भक्तिर मुक्ति विधायिनी, और नाना ज्ञान विशेष मंत्र विततिम। देखो ध्यान से सुनना, नाना प्रकार के ज्ञान करने में और नाना प्रकार के मंत्र आदि के जाल में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। नाना ज्ञान विशेष मंत्र विततिम त्यक्त्वा, इन सब को तो छोड़ो और श्याम सुंदर भगवान है उनको अपने हृदय में रख करके, हे बुद्धिमान पुरुषों, आप उनके भजन में लग जाओ और बाकी दूसरे जाल झंझाल से अपने को बचाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। इस प्रकार से पार्वती जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, अब राम जी महाराज पंपा सरोवर की तरफ प्रस्थान करते हैं। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम
राम राम
राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम